मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 2 मार्च 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए जो मैंने विषय चुना है, विषय तो वेल नोन होगा आपके लिए, लेकिन यह जो जुमला उभरा है फिलहाल अर्थ जगत में, पूरी की पूरी दुनिया में, वह इनफैक्ट नया है। और यह विषय है फ्रेंड्स UBI, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, सबके लिए। बेसिक का मतलब है बुनियादी और इनकम का मतलब है आय, यानी कि सभी के लिए, सभी लोगों के लिए यूनिवर्सल, यानी कि सभी के लिए आय की कुछ न्यूनतम सीमा निर्धारित करके वह उपलब्ध कराया ही जाए, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। यानी कि हर देश में गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, यहां तक कि बेरोजगार लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, तो इस तरह का जो समूह है यह एक ऐसा समूह है जिनके पास आय के अपने साधन नहीं हैं, उनको कुछ न कुछ इनकम तो मुहैया कराई ही जाए। और वह जो इनकम उनको मुहैया कराई जाए, वह इनकम एटलीस्ट इतनी हो कि उनका जीवन आराम से चल सके। तो जीवन चल सके, यह बेसिक हो गया। अब आय का सवाल है कि यह इनकम उनको उपलब्ध कराई कैसे जाए, उसका क्या आधार हो सकता है। तो जैसे भारत में हम मनरेगा को ले लें, तो मनरेगा का पैटर्न देखिए कि काफी कुछ आपको यूबीआई की तरह दिखाई देगा। मतलब यह कि जिस व्यक्ति को भी काम चाहिए वो मनरेगा में जाकर काम मांग सकता है और उसको गारंटी है कि काम मिलेगा, गारंटी है काम मिलेगा। याद रखिए, ये नहीं कि आपको रिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये गारंटी योजना है। आपको काम मिलेगा, 100 दिन का काम मिलेगा साल में, और न्यूनतम मजदूरी जो लगभग 200 के आसपास, 195, स्टेट में थोड़ा सा डिफर भी करता है, 195 है, चलिए 200 मान लेते हैं। तो यानी कि साल भर में सरकार आपको 20,000 रुपए देने की गारंटी देती है। बस फर्क इसमें इतना है कि इस गारंटी के बदले आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज मनरेगा को भी आप एक तरीके से यूबीआई का थोड़ा सा छोटा रूप मान सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मनरेगा की चर्चा विशेषकर यहां इसलिए की है आपका ध्यान दिलाने के लिए कि हो सकता है कि कुछ इस तरह के का ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की कुछ योजनाएं यूबीआई की तरह हैं, तो और कौन सी योजना है जो भारत यूबीआई की तरह ले सकता है। आप देखिए कि हमारे यहां सब्सिडी देने की नीति है, हम सब्सिडी देते हैं किसानों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, शॉप के तहत सस्ते कीमत पर अनाज मुहैया कराया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए तो आपको 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं मिल जाएगा, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। सस्ते कीमत चीनी मिल जाएगी, सस्ते कीमत पर उनको केरोसिन ऑयल मिल जाएगा, यानी कि जो उनकी मूलभूत जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती कीमत क्या नहीं के बराबर है। जैसे अगर आप एक उदाहरण ले लें कि चलिए एक आदमी है, राइट, एक आदमी एक दिन काम करके 200 रुपए कमाता है, तो 200 रुपए कहां से ले आएगा, मनरेगा से ले आएगा, वो उसकी गारंटी है, तो 200 रुपए की उसकी इनकम हो गई। अब आप सोचिए कि 200 रुपए एक दिन की कमाई करके वो 2 रुपए किलो के हिसाब से 50 किलो चावल खरीद सकता है, 50 किलो चावल। और वैसे चावल का रेट आप मार्केट में जाइए तो पता लगा 15 रुपए का है। तो अगर आप सब्सिडी देखें, ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर कही, तो सब्सिडी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सल जो इनकम है उसी से ही, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ ही इशारा करती है। केवल इसी में नहीं, बल्कि सरकार तो और भी दूसरी कई चीजों में सब्सिडी देती है आपको, खाद में, किसानों को खाद में मिलता है, जब उनको ऋण दिया जाता है तो उसमें सब्सिडी मिलती है, ऋण माफ कर दिया जाता है किसानों का, तो ये भी आप कह लीजिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसा ही है, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्योरली नहीं है। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट आया है, आप भारत में इसे पिछले लगभग 1.5-2 साल से ही सुन रहे होंगे, ज्यादातर तो आपको 1 साल से इसका हल्ला सुनाई पड़ रहा होगा। अब तो यहां तक कि सरकार भी बात करने लगी और हमारे जो अभी बजट से पहले जो आर्थिक समीक्षा आई है उसमें इसको बाकायदे मेंशन भी किया गया है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को। और हमारे जो सुब्रमण्यम जी हैं नीति आयोग में और यहां तक कि हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो सलाहकार हैं, वो भी अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फेवर में बातें करने लगे हैं। मतलब उनका अपना कैलकुलेशन है। तो मित्रों, समझना पड़ेगा हमें कि अभी ये क्यों बेसिक यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, पहले ऐसी बातें क्यों नहीं हुई। इसको इसके पीछे बहुत ही एक मूलभूत कारण है, और मूलभूत कारण है डेवलप्ड कंट्री, क्राइसिस इन डेवलप्ड कंट्री। मतलब भारत में जो इन चीजों को लेकर के क्राइसिस है, गरीबी की क्राइसिस है, बेरोजगारी की क्राइसिस है, तो उसको अभी तक भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री ने कैसे हैंडल किया है? मनरेगा के तहत हैंडल कर लिया, या कह लीजिए कि और योजनाएं बना करके कर दिया, सब्सिडी दे करके कर दिया, इस तरीके से हमने हैंडल किया है। कुछ सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम बना दिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना ले लीजिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना को भी आप थोड़ा सा इसी रूप में मान सकते हैं कि भाई जो वृद्ध हो गए हैं उनको थोड़ी सी आय प्रोवाइड कर दी जाए, हालांकि जो दिया जाता है वो ऊंट के मुंह में जीरा ही जैसा है। तो डेवलपिंग कंट्री तो इस तरीके से इसको मैनेज कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्री को क्या जरूरत पड़ गई? जो डेवलप्ड हैं, जो ऑलरेडी धनी देश हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई? दोस्तों, इसकी सबसे पहले चर्चा जब आई अभी लगभग साल भर पहले ही, तो ये स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों से ये कहा कि हम आपको, आप घर बैठिए, हम आपको कुछ बेसिक इनकम देंगे। क्यों बेसिक इनकम देंगे? वो इसलिए क्योंकि हम आपको रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बटने चोले की बहुत हाई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे होती चली जा रही है, रोबोट आते चले जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के सामने आ गया है। तो ये जो रोबोट हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी है, ये लोगों को रिप्लेस करती जा रही है। आप देखेंगे साल भर के अंदर कि कितने सारे इस तरह के एम्प्लॉयज निकाल दिए गए हैं, उसकी जगह पर इन सबको लेकर के आ रहे हैं। अब एक लोक कल्याणकारी राज्य में, या कह लीजिए डेमोक्रेटिक सेटअप में ही, आधुनिक राज्य व्यवस्था में राज्य का यह दायित्व तो बनता है कि वह अपने नागरिकों को कम से कम जीने की स्थितियां तो प्रोवाइड करे। और जो जीने का अधिकार है, इस सभी का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन्स। अब तो एनिमल तक के जीने के अधिकार की बात होती है, तो अब आप क्या करेंगे? अपने नागरिकों को आप रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और जीने का आपने अधिकार दे रखा है, तो कैसे जिए? तो या तो उनको आप फ्री में सामान प्रोवाइड कर दीजिए जो जीने के होते हैं, जैसे आप देखें कि चुनाव के समय में आप देखा है ना कि इतने किलो चावल देंगे और साइकिल देंगे, ये उसका एक दूसरा रूप है, वो जीने के अधिकार के तहत नहीं है लेकिन एक लालच है, उनको चीजें दी जा रही हैं। या फिर आप उनको कुछ इनकम दे दीजिए, है ना, या तो भोजन वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए या आप उनको इनकम दे दीजिए, बंधी बधाई इनकम। और उस इनकम को कैलकुलेट कर लीजिए कि एक आदमी जो काम नहीं कर रहा है उसको खाने पीने रहने और जो भी उसकी सामान्य सी जो जरूरतें हैं, जिनको हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हर महीने कितने धन की जरूरत होगी, उतना धन उनको बैठे प्रोवाइड कर दीजिए। जिसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेरोजगारी भत्ता, हम बेरोजगार नहीं दे रहे हैं तो उसके बदले में आपको इतना भत्ता दे रहे हैं ताकि आपका जीवन चलता रहे। तो डेवलप्ड कंट्री में कहां से प्रॉब्लम आई फ्रेंड्स? डेवलप्ड कंट्री में इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम आई है, और ये बढ़ता ही चले जाएगा, जिसको लेकर के दुनिया बहुत भयानक रूप से परेशान है, आतंकित है, समझ लीजिए आशंकित है, आने वाला वक्त क्या होगा। तो जब स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों से पूछा, वहां तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसने अपने नागरिकों से पूछा कि भाई हम इस तरीके से आप लोगों को देना चाह रहे हैं, तो वहां के नागरिकों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। अब इसको आप ये मत समझिए कि वहां के नागरिक बड़े स्वाभिमानी हैं इसलिए मना कर दिया, वो तो चलिए होंगे क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अच्छी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। देखिए 80 लाख की तो टोटल आबादी है, हमारे दिल्ली का आधा है, समझ लीजिए। तो ठीक है, चलिए उनके पास रिसोर्सेज भी उसी तरीके से है, बात स्वाभिमान की उतनी नहीं है। उनका यह कहना है कि क्या आदमी सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ है? हम उठेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, उठेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। अगर आदमी काम नहीं करेगा तो वो जिएगा कैसे, वो अपना वक्त कैसे काटेगा? तो हमें काम चाहिए। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते फ्रेंड्स कि अगर किसी को सच में जिंदगी भर चुपचाप बैठे रहना पड़ जाए, उसका एक ही उद्देश्य हो जाए कि सोए खाए, तो वो तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो चेतना है, उसके पास एबिलिटी है, उसके पास कल्पना है, उसके पास योग्यताएं हैं, वो उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। ह्यूमन बीइंग इज ए क्रिएटिव एनिमल, वो रचनात्मक व्यक्ति है। तो जिंदगी में रह क्या जाएगा, फिर खाओ सो खाओ, कल्पना करके देखिए उस समय की। उन लोगों ने मना कर दिया। फिर दोस्तों दूसरे लोगों ने भी फिर इस तरह के प्रस्ताव रखे, मतलब अब आपको जो मैं नाम बता रहा हूं आप देखिए कि सारे के सारे बहुत अच्छे और पहुंचे हुए देश हैं आर्थिक रूप से। ये मत समझिएगा कि ये जो बेरोजगारी भत्ता है इसके देने की जो बात हो रही है वो केवल भारत जैसे गरीब देश में हो रही है, जहां की 20% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे रह रही है, जहां कुपोषण की समस्याएं हैं, अशिक्षा की समस्याएं हैं, वहां बहुत जरूरी हो गया है कि अपने नागरिकों को इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। तो हम डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। फिर फिनलैंड ने शुरू किया, फिनलैंड ने भी इसी तरह का प्रस्ताव रखा, थोड़े बहुत वहां लागू भी कर दिया गया। आपको ताज्जुब होगा कनाडा जो अपने आप में इतना मतलब वो माना जाता है डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, जो अमेरिका के टक्कर का, हालांकि कनाडा की बात नहीं होती क्योंकि कनाडा की आबादी बहुत कम है, 2.5 करोड़ की आबादी है, तो उसको लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और उस तरह से सुपर पावर भी नहीं है। तो कनाडा तक में ये हो रहा है कि लोगों को अब यूबीआई प्रोवाइड किया जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि हम उन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मित्रों आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा विकास है वो विकास अब कहां जा रहा है और किस तरीके से चीजें बदल रही हैं और दुनिया के सामने जो संकट हैं वो किस किस रूप में अब आ रहे हैं आप समझ सकते हैं। मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो यूबीआई है, जैसे अभी मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो जो यूबीआई का कॉन्सेप्ट है, नो डाउट कि डेवलप्ड कंट्री में तो ने शुरू किया है, लेकिन वहां ये जो यूबीआई का कॉन्सेप्ट था एक दूसरे रूप में मौजूद था। जैसे अमेरिका का तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जहां हम अमेरिका में जाकर के रुके थे जिनके घर पर, तो वहां एक बुजुर्ग थे जो मेरे फ्रेंड थे, उनके फादर थे, अब तो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो बताते थे कि सुबह उनके घर पर बस आ जाती थी और उस बस में वहां उस एरिया के जितने भी बुजुर्ग थे वो बैठ करके, एक क्लब जैसी जगह थी, एक बहुत ही खूबसूरत जगह, चले जाते थे। और कल्पना नहीं कर सकते, आपको लगेगा जैसे कि 5-स्टार होटल है, वहां वो चले जाते थे, उनके मनोरंजन के लिए खेल है, डॉक्टर है उनके इलाज के लिए, वहां मेस है, वो खाना खाते थे, आराम से दिन काटते थे और शाम तक वापस आ जाते थे। और सरकार उनको हर महीने भत्ता देती थी, जिसका वृद्धावस्था पेंशन योजना कह सकते हैं, ताकि उनको जो दवाइयां खरीदनी है वो दवाइयां वो अपनी जरूरत की खरीद सकें, और उससे भी बड़ी बात ताकि वो उसका पैसा बचा करके दुनिया भ्रमण के लिए जा सकें, और वो दुनिया घूम करके आ गए थे उसी पैसे के बचत कर करके। ये नहीं कि हमारी तरह वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह 400-500 रुपए दे दे रहे हैं और बात खत्म हो जा रही है, मतलब वो पर्याप्त देते थे। तो वहां तो जो सुरक्षा योजना है डेवलप्ड कंट्री में बहुत ही हाई लेवल की है। विकलांगों के लिए आप देखिए, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं, उनके लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सामाजिक सुरक्षा, जिसको हम समाज कल्याण कहते हैं। तो यूं कह लीजिए कि वो जो यूबीआई है वो डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन था उनकी नीतियों का, वो लगभग लगभग इसी तरीके का है, इसी तरीके की वो नीति है। अब दोस्तों अब हम इसको भारत के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं कि अब भारत में क्या हो सकता है, क्या ये संभव है, क्योंकि अब इस पर विचार काफी तेजी से चल चुका है। देखिए जब भारत की हम बात करते हैं तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम उनके लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे शुरू करेंगे, तो अगर उनके लिए होगा क्योंकि उन्हीं के सामने संकट है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको हम बहुत समय तक नहीं रोक पाएंगे। जो यंग अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड लोग हैं, जो युवा हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनको भी फिर हमें इसमें शामिल करना पड़ सकता है, ये मानकर चलना चाहिए। क्योंकि अब मैं उस बात पर आ रहा हूं कि सिविल सर्विस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है ना, मैं उस एंगल से बात कर रहा हूं। तो गरीबी रेखा से नीचे अगर हम लें तो लगभग 19-20% हमारी पॉपुलेशन है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हम कितनी पॉपुलेशन है। मान लीजिए कि 25 करोड़ लोग हमारी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ठीक है, फिर हम इनको कितना पैसा दें, बेसिक क्या होगी, बेसिक इनकम क्या होगी, तो उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे यहां क्या है, मतलब यही है कि गांव के क्षेत्र में 32 रुपए, चाहे कितना भी व्यवहारिक व्यवहारिक हो, प्रतिदिन 32 रुपए से उनको कैलोरी मिल जाएगी, और अगर शहर में रह रहे हैं तो 47 रुपए से, तो औसत मान लीजिए कि 40 रुपए के आसपास आएगा, 40 रुपए डेली, 40 रुपए डेली का मतलब है पर मंथ 1200 रुपए। अब 12 को 12 से गुणा कर दीजिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि पर मंथ लगभग लगभग 14-15 हजार रुपए, पर ईयर 14-15 हजार रुपए आपको प्रति व्यक्ति देना होगा। और इस 14-15 हजार रुपए, चलिए राउंड फिगर में कर लीजिए, इस 15 हजार को फिर आप 25 करोड़ से गुणा कर लीजिए, तो फिर आपको लगेगा कि लगभग लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हर साल हमको इसके तहत खर्च करना पड़ेगा, 3 लाख करोड़ रुपए। ये मैं एक सामान्य कैलकुलेशन बता रहा हूं, मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं आपके दिमाग में, कि अगर कभी इस तरफ का प्रश्न पूछा जाए कि ये भारत के लिए कितना व्यावहारिक है, तो आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन हो, एक धारणा हो कि आप उसका उत्तर दे सकें, अदरवाइज फिर तो आप फंस जाएंगे कि क्या करें, कैसे करें, क्या सोचें। तो बस मैं आपके दिमाग में कुछ तथ्य डाल रहा हूं। तो दोस्तों, ये 3 लाख करोड़ रुपए अब कहां से आएंगे, आप सोचिए, हमारी टोटल आय कितनी है, लगभग लगभग 21-21.5 लाख करोड़ है, अगर हम 2016-17-18 बजट देखें तो 21.5 लाख करोड़ रुपए हम कमाएंगे। लेकिन उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो हमारा पूरा का पूरा जो बजट है, और बजट जहां खर्च होता है उसमें आप देखेंगे कि 10% हमारा जो एक्सपेंडिचर है, 10% एक्सपेंडिचर सब्सिडी पर जाता है, सब्सिडी, यानी कि कुल मिलाकर हम लगभग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मतलब सब्सिडी के रूप में दे देते हैं। तो इसका एक आधार यह हो सकता है कि सब्सिडी पूरी की पूरी सब्सिडी बंद कर दी जाए, तो हमारे पास 2 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे और वो हम बेसिक इनकम के रूप में दे देंगे। अब सवाल रहा 1 लाख करोड़ रुपए अब कहां से लाया जाए, राइट? तो इसको जो अर्थशास्त्री है वो अपने अपने ढंग से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक कैलकुलेशन ये भी है कि अगर हम लोगों को बेसिक इनकम प्रोवाइड करेंगे तो होगा क्या कि उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो बाजार से सामान खरीदेंगे, जब बाजार में मांग बढ़ेगी वस्तुओं की तो उत्पादन बढ़ेगी, अगर उत्पादन ज्यादा बढ़ा तो स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, सरकार को टैक्स मिलेगा तो काफी भरपाई तो उसको उस टैक्स से हो जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक जान आ जाएगी। और इस पर दोस्तों एक 2011-12 की बात है, 2011 में जो यूनिसेफ है उसकी मदद से मध्यप्रदेश का एक जिला इंदौर, वहां एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, यानी कि कुछ लोगों को इस तरह से बेसिक यूबीआई प्रोवाइड किया गया, उनको बेसिक इनकम उनकी बढ़ा दी गई, उनकी आय बढ़ा दी गई, और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। क्योंकि हम सब क्या मानते हैं कि अगर इनको दे दिया गया तो ये सब आलसी हो जाएंगे, ये सब दारू पी के खत्म कर देंगे, फलाना फलाना, एक सामान्य सी हमारे दिमाग में धारणा बनी हुई है अपने लोगों के बारे में। लेकिन वहां देखा गया कि जब इनको ये आमदनी प्रोवाइड की गई तो इन्होंने बकायदे पैसा बैंक में रखा, उस पैसे से अपना खाने पीने के सिस्टम को ठीक किया और एजुकेशन में लगाया, बच्चों के साफ सफाई में, घर के रख रखाव में लगाया, तो बच्चे एजुकेट होने लगे, दूसरी तरफ हेल्थ भी इनकी अच्छी होने लगी, हेल्थ भी अच्छी होने लगी क्योंकि अब साफ सफाई रख रहे हैं, भोजन अच्छा कर रहे हैं, तो अब सरकार की इस तरीके से भी बचत हो जाती है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर उनको जितना खर्चा करना पड़ रहा है, अगर उनके नागरिकों के हेल्थ अच्छे हों तो बटने जरूरी कि वहां का खर्चा बच जाएगा। फिर यह भी देखी गई कि वहां के लोगों की जब आय बढ़ी तो वहां के आसपास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई, कुछ दुकान खुल गए, कुछ ठेले लग गए, कुछ नई नई चीजें और बिक्री की आने लगी, तो इससे स्पष्ट हुआ कि नहीं, अगर लोगों को बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जाए तो ये नहीं कि उस इनकम का वो मिसयूज ही करेंगे, बेसिकली वो उनके अंदर जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं, आत्मसम्मान की भावना पैदा करते हैं, एक तरह अलग किस्म की समझदारी आती है, फिर वो उस पैसे का बहुत सोच समझ कर उपयोग करते हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट में उभर कर सामने आया। तो दोस्तों, इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही फिर नीति आयोग में ये विचार चला कि नहीं, हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। और नीति आयोग के हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, जो पनगड़िया जी, वो तो इसके बहुत बड़े समर्थक भी हैं, इसके काफी बड़े समर्थक है कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या होगा, ये बीच के सारे जो लाग लग, अब जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप कल्पना करके देखिए कि हम अनाज सस्ता तो देते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट खर्च होता है वो कितना खर्च होता है, फिर बहुत सा पैसा पता लगता है कि वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है, लीकेज भी तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अब बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर भारत में भी बात होने लगी है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे इस टॉपिक को आप लगातार अपडेट करते रहें, सरकार क्या घोषणा कर रही है इसके बारे में, क्या नए विचार आ रहे हैं, क्या नए सर्वेक्षण आ रहे हैं, वो सब आपके नॉलेज में होना चाहिए ताकि ये टॉपिक अपडेटेड होता रहे, अद्यतन होता रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से है। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।